पांचों पांडवों में देखते हैं कि वो अपने परिवार के सहित हैं, है ना। किंतु हनुमान जी तो परिवार में नहीं है, परिवार में नहीं है, किंतु इस हनुमान से भी पांचों पांडवों की भक्ति उत्तम है, ये तो ठीक है। किंतु इन पांचों पांडवों से भी उद्धव जी श्रेष्ठ हैं, है ना। तो उद्धव जी के पत्नी और पुत्र और परिवार था कि नहीं? नहीं, कोई नहीं। उन्होंने इसीलिए नहीं कहा कि हमारा प्रेम अखंड रहे कृष्ण के प्रति। किंतु उद्धव जैसे भी गोपियां श्रेष्ठ हैं, तो उनको देखते हैं कि परिवार, उनका क्या परिवार है। अब ये विचार करो, गोपियों का कौन सा परिवार है? कृष्ण को छोड़ करके उनके जो तथाकथित पति, सास, ससुर और सब जो लोग थे, वो परिवार हैं कि नहीं? नहीं परिवार है। इस चीज को समझो, उद्धव जी से, हनुमान जी से कोटि गुण वैरागी ये गोपियां हैं, इस चीज को समझना होगा। ये गोपियां आशाम हो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमप गुलमलतौ सधीनां जा दुस्तजन स्वजन आर्ज पथंच हित्वा। अपने स्वजनों को, स्वजन माने कौन? कहलाए जाने वाले पति, पुत्र, बंधु, बांधव, धन, संपत्ति, देहाशक्ति, देह के भोग, दैहिक इत्यादि सभी कुछ को, देह और दैहिक सब कुछ को विस्मित हो गया, छोड़ दिया और कृष्ण में अपने प्रति को अखंड रूप में लगा दिया। उनका इतना भी, उद्धव जी का कुछ है, हनुमान जी को भी कुछ हो सकता है, किंतु गोपियों में अपना, मेरा अपना कृष्ण के अतिरिक्त और किसी भी वस्तु में नहीं है। यहाँ तक कि हनुमान मर्यादा को नहीं छोड़ सकते, उद्धव जी भी मर्यादा नहीं छोड़ सकते, और गोपियों ने फुटबॉल की तरह उस मर्यादा को भी उड़ा दिया। लोक लज्जा, कृष्ण का जो नंगी आ जाओ बहुत अच्छा, कृष्ण टोल्ड देम टू कम विदाउट क्लॉथ, दे कैम नेकेड। ऐसा कोई कर सकता है? सीता जी तो नहीं कर सकती, रुक्मिणी सत्यभामा नहीं कर सकती, ये गोपियों के लिए ही संभव है। इसलिए इस चीज को समझना चाहिए, जब तक कि ऐसा भाव नहीं हो, जब तक कि सांसारिक भोग की तनिक भी लालसा रहेगी या कोई भी सांसारिक बात रहेगी, तब तक ये प्रेम नहीं आएगा। गुरुदेव क्या करते हैं? इन्हीं से क्रमशः से छेदन करते हैं, ऐसा करते हैं अनर्थ छेदन हो जाए, किंतु उस व्यक्ति का कुछ बिगड़े नहीं, वो शुद्ध हो जाए। यदि अनाधिकारी को के अनर्थ को यदि छेदन करेंगे ना, तो क्या होगा? वो बिगड़ करके चला जाएगा, सुनेगा नहीं। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ में किसको कैसे ऑपरेशन करना चाहिए वो समझते हैं, जहाँ तक जिसका अधिकार है उसी के अनुसार में करते चले जाते हैं, जितना सह सकता है उसे आगे नहीं करें। इसलिए जब तक कि ऐसी भावनाएं दूर न हो जाएं, संसारी कामना वासना सब, जब तक कुछ भी रहेगा शेष, तब तक वो कृष्ण प्रेम नहीं होगा, इसे भी नहीं होगा। ऐसे रसिक वैष्णव का संग और उनका ये हरि कथा यदि मिलेगी, उसके द्वारा ये संभव हो सकता है। इसलिए अब चल रहे हैं स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, फिर ज्योति स्वरूप वो ब्रह्मलोक जिसमें मिलते हैं। इसी तरह से सबका वर्णन उन्होंने किया, कहते हैं मैंने किया तुमको, ये सबसे ऊपर में गोलोक है। अब इसकी विशद व्याख्या उन्होंने दी है, हम लोग किसी दिन दूसरे दिन करेंगे। अब यही समझिए, जा यही समझने की चेष्टा करें कि यह वृंदावन गोलोक क्या, तीन लोग से न्यारी है, इसका पाना सहज नहीं है, इसका दर्शन भी पाना बड़ा भारी कठिन है। इसलिए बड़े बड़े भक्त लोग भी यहाँ आकर यदि नियम अनुसार में रूप सनातन के पथ में भजन न करें, अनर्थों को छोड़कर शुद्ध वैष्णव के अनुगत्य में इस वृंदावन भूमि में रहकर यदि नित्य साधन भजन करते हुए रहें और उस प्रकार से उनके हृदय में दीनता आए, है मुझे कुछ नहीं हुआ, जीवन बेकार गया, जब ऐसी दीनता आएगी तो कृष्ण उसकी दया को देख करके उनका चित्त द्रवित हो जाएगा। यही समस्त साधनों का मूल तात्पर्य है, किसी प्रकार से कृष्ण के चित्त को द्रवित कर दिया जाए। बच्चा अपनी मैया के लिए किस लिए बुलाता है, कैसे रोता है, बिना रोए आएगी नहीं, खूब जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोने लगता है, मैया उसकी आ जाए द्रवित होने के वजह से, बुलाने से नहीं आएगी। उसी प्रकार से कृष्ण जब हमारी दीनता को देखते हैं, संपूर्ण रूप से इसके हृदय में धन्यता आ गई है, अब तब उसको दर्शन देते हैं, उस प्रेम को देते हैं। इस चीज को समझ करके हमको वैसी स्वाभाविक दीनता लानी होगी, तभी ब्रज का दर्शन संभव है, तब हम लोग इन चीजों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज यहीं तक रहे। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो कीर्तन कर रही।
गिरिधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरी, मेरो राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी,
इसी सुन
राधा रमन।
वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विजे। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देव प्रणमामि हरिप्रिये। हा देवी काकू भर गदगदयाद वाचा जाचे निपत्त भुवि दंडवत उद्भटार्ते अस्य प्रसादमबुदस्य जनस्य कृत्वा गंधर्विके तव गणी गणनं विधि। अंग श्यामलिम छटाभिरभित मंदीकृतेन्दीवरं जड्डं जागुडरोचि संविदद तंग पट्टंबरस्य श्रिया वृंदारण्य निवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कंद निवेशितो जलभुजं ध्यायें दामो। भक्तियाहीनापराधलक्ष्य क्षिप्ताश्च कामादितरंग मध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणं। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानुतोऽस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मे माम चरणम्। उत्तरा माने परीक्षित जी से यह प्रश्न किया था, जो कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, ब्रह्मवादी हैं, शंकर की उपासना करने वाले हैं, और फिर जो नारायण की सेवा करने वाले हैं, उनका भजन करने वाले हैं, द्वारकाधीश का, राम का भजन करने वाले, ये सब लोग, और कृष्ण का भजन करने वाले, कृष्ण का एकांतिक भजन करने वाले, उसमें भी गोपी भाव लेकर के जो भजन करते हैं, ये सब अलग अलग लोकों में जाएंगे या एक ही लोक में जाएंगे? उसके लिए कह रहे हैं, हमने उपाख्यान के द्वारा ये बतलाया। उन्होंने कहा जी जरा फिर से बतलाइए, उसी को ये फिर से बतला रहे हैं। वो बतला रहे हैं स्वर्गात ऊर्ध्वम ब्रह्मलोको ब्रह्मर्षिगण सेवितः तत्र सोमगतिश्चैव ज्योतिषांच महात्मना। अब ये अपनी बात अब सनातन गोस्वामी जी नहीं कर रहे हैं, या परीक्षित महाराज जी का वो प्रसंग तो समाप्त हो गया। अब इसके संबंध में स्वर्ग क्या है, इसके ऊपर में ब्रह्मलोक क्या है, इसके ऊपर में वैकुंठ लोक क्या है, इसके संबंध में पूर्व पूर्व ऋषियों के द्वारा शास्त्रों में जो बतलाए गए हैं, उन श्लोकों को यहाँ उद्धृत करके और बतला रहे हैं। इंद्र कह रहे हैं, कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया और इंद्र ने 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा की। इंद्र ने समझा जैसे ये वृंदावन ब्रज, एक तो जाने दो, थोड़ा सा जाइए। मूसलाधार वर्षा हुई, इंद्र ने सोचा ब्रज नष्ट हो गया होगा, किंतु पीछे देखा जब ब्रज का कुछ नहीं बिगड़ा, तो सुरभि जी को अपने साथ लेकर और कृष्ण की स्तव स्तुति कर रहे हैं। सुरभि ने पहले कृष्ण को कहा, इसके बाद में उसके अनुगत होकर के ये कृष्ण का स्तव स्तुति कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं इंद्र कह रहे हैं। स्वर्गात ऊर्ध्वम ब्रह्मलोको, स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक है। यह ब्रह्मलोक ब्रह्मर्षियों के द्वारा सेवित है ब्रह्मलोक। तत्र सोम गतिश्चैव, वहीं पर सोम की गति है। ज्योतिषानांच महात्मनाम, और महात्मा जो ज्योतिष के गण हैं, उनकी भी वही प्रगति है। अब इसको स्पष्ट रूप में सनातन गोस्वामी जी बतला रहे हैं। स्वर्ग कहाँ है, इसमें 5 श्लोकों के द्वारा ये बतलाते हैं। स्वर्ग लोग किसे कहते हैं और लोग किसे कहते हैं, और उन लोगों की जो गति होती है, कर्मी लोग, ज्ञानी लोग, उनमें कहाँ किसकी गति होती है, ये बतला रहे हैं। पहले है भूर भुआ स्वः महाजन तप, ये ऊपर के लोग। भू माने भूमंडल, भुआ भुआ कहाँ से है, जहाँ तक पक्षियों की गति होती है, ये पृथ्वी लोक के अंदर मान लिया गया। यहाँ पर पक्षियों की गति जहाँ से आकाश ऊपर नहीं है, वहाँ से आरंभ करके स्वर्ग लोक के नीचे तक ये भुआ,
ये पृथ्वी नहीं आया,
पृथ्वी के ऊपर, ये पृथ्वी का मंडल है जहाँ तक चिड़िया उड़ करके जाती है, ये भूमंडल हुआ है। और भूमंडल के बाद में आया भूवह, वहाँ से आरंभ कर जहाँ तक पक्षियों की गति है उसके ऊपर से लेकर के स्वर्ग के मंडल तक, इसके ऊर्ध्व में स्वर्ग है जहाँ तक पर देवता लोग वास करते हैं। स्वर्गलोक के ऊपर में ब्रह्मर्षियों के द्वारा सेवित जो ब्रह्मलोक है उसको भी स्वर्ग शब्द से ही समझो। कहाँ तक? ब्रह्मलोक तक, जहाँ पर भी ब्रह्मा रहते हैं ब्रह्मर्षियों से सेवित, इसको भी स्वर्ग तक ही समझो। इस भी स्वर्ग तक ही यहाँ कहा गया, पूर्वस्व महाजन तप सत्य, ये वहीं तक का है, स्वर्ग तक का है। यहाँ पर भी जो ये लिखा है स्वर्गलोक से ऊपर ब्रह्मर्षि सेवित जो ब्रह्मलोक है, ये बिरजा के पार क्या जो ब्रह्मलोक है उसके लिए कहा जा रहा है। ब्रह्मा जहाँ पर रहते हैं उसके लिए नहीं कहा गया, ये पांचों से ऊपर है। भूर्भुव स्वः महाजन तप सत्य, ये जो ब्रह्मा जो रहते हैं जिनका भी विनाश हो जाता है नहीं? यहां तक तो वो स्वर्ग को ही ले रहे हैं। यहाँ तो ये ब्रह्मर्षि लोग जो हैं, ब्रह्मर्षि कौन हैं? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार इत्यादि, और ये महर्षि लोग हैं जो नौ जोगेंद्र हैं, कवि, हवि, अंतरिक्ष, पिपलायन, प्रबुद्ध इत्यादि, ये लोग हैं। तो इन लोगों के सवा जो सेवित जो ब्रह्म लोग स्वर्ग लोक में ही समझो, जैसे कि इस भागवत में और जगह लिखा गया है, उस विराट पुरुष के दोनों चरणों को भूलोक समझो, नाभि को भूवर लोक, मस्तक को स्वर्ग लोक समझो। और द्वितीय स्कंद में के प्रमाण के अनुसार में स्वर्ग से आरंभ कर सत्यलोक पर्यंत सभी स्वर्ग शब्द वाच्य हैं। भूर्भुव स्वः महाजन तप सत्य, ये स्वर्ग है। अर्थात स्वर्ग मह जन तप सत्य, ये पंचलोक को ही स्वर्ग कहा गया है यहाँ। और यहाँ तक ब्रह्मांड की सीमा है, ब्रह्मांड की यही तक सीमा है। इसके ऊपर में ब्रह्मलोक व ब्रह्ममय लोक वैकुंठ लोक, इसके ऊपर में ब्रह्मलोक, ब्रह्म माने ब्रह्म संबंधी लोक, जहाँ पर कि मुक्ति पा करके जीव मुक्त होकर के चले जाते हैं, फिर वहाँ से लौटना नहीं होता। ये उसको वैकुंठ में ही रख लो, वैकुंठ का निचला भाग। क्यों? यहाँ पर सच्चिदानंद इसको कहते हैं, यह लोक सच्चिदानंद है। ब्रजा के पार में जो कुछ है वो सच्चिदानंद है, इसलिए उसका विनाश नहीं होता। जैसे ये ब्रह्मलोक जो है जिसमें लोग मुक्त पा करके उसमें मिलते हैं, उसमें चित केवल चिंत का आंशिक प्रकाश है, वो चित शक्ति का, इसलिए संपूर्ण रूप से चिन्मय तो नहीं है सच्चिदानंद, किंतु वो विनाश नहीं उसका है, इसलिए सच्चिदानंद कहते हैं। ब्रह्मलोक के तात्पर्य में भगवान, ब्रह्म माने यहाँ पर भगवान समझो, ब्रह्मलोक माने भगवान का लोक। और अब देखो जी सब कैसा होगा, ब्रह्म माने यदि रख तो भगवान, तो ब्रह्मलोक माने भगवान लोक, भगवान लोक चिन्ह सच्चिदानंद है, इसलिए वैकुंठ के अंतर्गत में वो आएगा। तब भगवान श्री कृष्ण का वैकुंठाख्य लोक यदि ब्रह्मांड के अश्वित आवरण का अतिक्रम करने से मुक्ति पद कहते हैं कि ये उसको समझो वैकुंठ लोक को, किंतु इसको इस तरह से समझो, ये प्रकृति इत्यादि के आठ आवरण हैं इस ब्रह्मांड के बाद, उनको यहाँ पर ओवरलुक किया गया है, नहीं कहा गया, किंतु उसको भी समझो। कलकत्ता से चलने पर पहले मथुरा हो करके तब वृंदावन में पहुँचते हैं, तो इसका मतलब और सब जो काशी प्रयाग इत्यादि सब तो छूट गया, नहीं कहा, ऐसे ही समझो। अभी अष्टावरण पृथ्वी का आवरण, मन बुद्धि चित्त इत्यादि के आवरण, ये पांच मन और प्रकृति ये सब आवरण हैं, आठ आवरण, पांच और तीन और आठ आवरण। ये गीता में नहीं कहा गया है ना अष्टधा, अष्टधा वो आठ आवरण। इससे पृथ्वी जो है और भी सुंदर है, वहां पर मोहिनी के रूप में प्रकृति है, आवरण में एक एक आवरण में अंतिम आवरण है प्रकृति। इसके बाद में मुक्ति पद आता है, उसके ऊपर में शिवलोक है और उसके ऊपर में बैकुंठ लोक। ये पहले बतलाया है जैसे वो गोप कुमार जी पार कर रहे हैं, तथापि आवरणों को, आवरण जो हैं अष्टावरण, इनको लोक नहीं कहा गया है। पृथ्वी का सूक्ष्म जो है वो पृथ्वी का आवरण है सार स्वरूप में, किंतु इससे लाखों गुण बड़ा है। उसी तरह से मन बुद्धि अहंकार चित्त इसके आवरण सब हैं। उनको लोक नहीं कहा गया। इसलिए यदि कर्मी से कुछ और सूक्ष्म व्यक्ति हुए तो उन लोकों में वास होगा। यद्यपि गीता में ऐसा कहा गया है श्री कृष्ण तुम परब्रह्म हो, परम ब्रह्म परम धाम अर्जुन ने कहा है कृष्ण के लिए, तुम्हारा काम भी तुम्हारा कार्य भी लीलाएं भी परम है अर्थात शाश्वत है। तथापि परब्रह्म नराकृति ये भी भागवत में आया, नराकृत परब्रह्म कृष्ण है। श्रीमद् भागवत के वचन से ब्रह्म पद भगवान के लिए ही आता है। अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप प्रजौकिसाम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सना, कृष्ण के लिए आता है। इसलिए कृष्ण का लोक होने से उनका लोक भी वैसा ही। हे गुड़ाकेश मैं आत्मा समस्त प्राणियों का अंतःकरण में अवस्थान करता हूं। अब यहां पर जो ब्रह्मलोक आया है शब्द स्वर्गात ऊर्ध्वम ब्रह्मलोक, इसके लिए कुछ बतला रही है ब्रह्मलोक कौन सा है और यहां पर कौन लोग जाते हैं। स्वर्ग में तो कर्मी लोग जाते हैं, कैसे कर्मी लोग जाएंगे, जो ऐसे कर्म करने वाले हैं जगत में उसका भोग नहीं है, इतने अधिक काम किया, इतना सुंदर सुंदर काम किया जिसका फल इस पृथ्वी में रह करके नहीं पाया जा सकता, उनको पाने के लिए वहां जाते हैं। साधारण रूप में हम जो बुरा और अच्छा कर्म करते हैं इसी जगत में फल मिल जाता है, किंतु जब इससे अच्छा कोई कर्म करते हैं जैसे दधीची जी देवताओं के लिए अपना जीवित हाड़ दे दिया, जगत में इसके भोगने वाला कोई भी सुख इसमें नहीं है, इसलिए वो स्वर्ग की गति पाएंगे, वहां पर उसका फल भोग करेंगे। इसलिए कर्मियों में जो अधिक श्रेष्ठ कर्मी हैं वो स्वर्गलोक में जाएंगे। अब यहां पर ब्रह्मलोक जो बतला रहे हैं सिद्धार्थ स्वामी जी कहते हैं सनातन ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक वैकुंठ का ही नाम है। अब इसको समझने के लिए ऐसा करो, जहां पर ब्रह्मर्षियों के द्वारा सेवित है ब्रह्मर्षि गणों के द्वारा सेवित ब्रह्मांड, ब्रह्म लोक माने भगवत लोक, जो ब्रह्म ऋषियों के द्वारा सेवित है। ब्रह्म प्लस ऋषि प्लस गण, ब्रह्म अब जोड़ लगा दो, ऋषि और फिर गण, ये तीन विभाग कर दो उसका ब्रह्मर्षि गण में, ब्रह्म ऋषि गण। ब्रह्म माने मूर्तिमान वेद समूह, ब्रह्म माने मूर्तिमान वेद समूह, ऋषि माने परम भागवत नारद आदि, और गण माने गरुड़ विश्वक्सेन इत्यादि, इन लोगों के द्वारा परिसेवित नित्य नित्य धाम। क्या हुआ? ब्रह्म तत्मूर्तिमान वेद सब मूर्ति रूप धारण करके वहाँ पर नारायण की सेवा करते हैं, परम भागवत नारद आदि उनकी सेवा करते हैं जिस लोक में नारायण की, और गण माने गरुड़ विश्वक्सेन जो परिकर हैं जहाँ पर उनकी सेवा कर, ऐसा ही है ब्रह्म लोक नित्य सेवी। जो लोग भक्ति के द्वारा, वैधि भक्ति के द्वारा भगवान की आराधना करते हैं, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दर्शाख्यात्म निवेदनम, वो उनको प्राप्त करते हैं। ऐश्वर्यमय भक्ति का जो पालन करते हैं वो लोग उस लोक को जाते हैं। इस कहते हैं तत्र सोम गतिश्चैव, वो सोम की गति है, सोम माने होता है एक चंद्र, किंतु देखा जाता है वहां सोम की गति नहीं है, इसलिए इसका अर्थ बदलना पड़ेगा। सोम माने होता है चंद्र को धारण करने वाले हैं ना, शंकर, है ना, तो यहां पर इसका अर्थ इस प्रकार से करते हैं, सोम माने उमापति शंकर जी, किंतु उमा के सहित जो वर्तमान सोम अर्थात शंकर जी हैं वो लोग वहां पर जाते हैं। शंकर जी जैसे मुक्त लोग वहां पर जाएंगे, और ज्योति ज्योतिषांच महात्मनम, ज्योतिषांग मने जो प्रकृति रूपी अंधकार को पार हो करके चले गए हैं, ऐसे मुक्त लोगों के लिए ज्योतिष आया। मुक्त लोग वहां पर जा सकते हैं, कोई बद्ध जीव नहीं जा सकता है। सत्य लोक तक अर्थात ब्रह्म लोक तक सभी बद्ध हैं, ज्ञान के अनुसार में उनमें ज्ञान का तारतम्य है, ब्रह्म तत्व को जानते हैं किंतु मुक्त नहीं हुए हैं। इसलिए सोम की गति अर्थात चंद्र की उमा के सहित, उमा भी भक्त हैं, यहाँ पर षष्ठी भक्ति विभक्ति हुई है। षष्ठी भक्ति माने के साथ, राम का, रामस्य, इसलिए सोमस्य गति है, सोम की गति स्वरूप है। ब्रह्मलोक गमन में कैसे अधिकारी होना चाहिए, ये परम पद कहलाता है, ये परम गति है। कहते हैं कि मुक्त लोग तो जा सकते हैं किंतु शंकर के समान मुक्त होना चाहिए, सभी मुक्त नहीं जाएंगे, कुछ मुक्त लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, वही ब्रह्म कौन निचला धाम, शिव के नीचे वाला धाम जहाँ पर शिव वास करते हैं, कौन शिव, सदा शिव, उसके नीचे एक ब्रह्म धाम है, वो ज्योतिर्मय है। जो लोग विष्णु के द्वारा मारे जाते हैं और जो असोहम सोहम ब्रह्म करते हैं वो दोनों लोगों को प्राप्त है, ये दो लोग सोहम सोहम करने वाले। उनकी चेतनता का अपहरण करके बस वहां पर लेकर के डाल देते हैं, पत्थर जैसा पड़ा रहता है। जो गति असुरों को मार करके देते हैं, उन असुरों को जो भगवान के प्रति विद्वेष किया, वो गति अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए इस गति को चाहने वाले भी आसुरिक होते हैं। इसलिए शंकर की मुक्ति चाहने वाले, शंकर माने शंकराचार्य के बतलाए, ये सब चीज क्या है, आसुरिक चीज है, इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। किंतु इससे ऊपर वाला जो लोक है उसमें नारद जैसे महात्मा गण, नारद को देखा जाता है भूलोक में भी भ्रमण करते हैं, स्वर्ग में भी उनको देखते हैं, ब्रह्मा जी के पास भी देखते हैं, शंकर जी के पास भी देखते हैं, वैकुंठ में भी देखते हैं, राम के पास तो सदैव घूमते रहते हैं, यहाँ तक कि द्वारकापुरी में जभी कुछ गड़बड़ी होती है तो कृष्ण धाम में जाकर के शांति से वहाँ रहते हैं। वो क्या श्लोक है, हाँ, गोविंद भुज गुप्तायं द्वारावत्या जब इस जगत में उनका चित्त चंचल हो जाता है कभी, तो द्वारकापुरी में जाते हैं, जो कृष्ण की भुजाओं के द्वारा परिरक्षित है, वहां पर माया नहीं प्रवेश करती। द्वारकापुरी में माया प्रवेश नहीं करती, क्यों, कृष्ण के भुजाओं से सब समय अर्थात जोग माया के द्वारा परिरक्षित है। तो डूब कैसे गई, कृष्ण चले गए तो वो डूब गई, जब तक कृष्ण है तब तक नहीं। और जो डूब गई देखते हैं वो भी माया है, डूबी नहीं किंतु हम डूबा हुआ देखते हैं। और इसके बाद में वृंदावन में भी उनको देखते हैं नारद जी को, जैसे भगवान के असंख्य रूप होते हैं वैसे उनके नित्य परिकरों के भी असंख्य रूप होते हैं, वो असंख्य रूप धारण करके अपने असंख्य प्रभु की सेवा करते हैं। इसीलिए जो लोग चैतन्य महाप्रभु की भी आराधना करते हैं और कृष्ण की भी आराधना करते हैं, दो रूप धारण करके दोनों लोकों में उनकी सेवा करते हैं, एक महाप्रभु का गण होकर के और दूसरे कृष्ण का परिकर होकर के, यहाँ तक कि एक ही परिकर यदि शांत से दास से सख्य और बात्सल्य और मधुर से भी सेवा करना चाहे तो वो पांच रूप धारण करके कृष्ण की सेवा कर सकता है, जैसे बलदेव प्रभु जी करते हैं। ऐसे ऐसे लोग अधिकारी लोगों के लिए यह संभव है। नारद जी के उतने ही रूप हैं जितना कृष्ण के हो सकते हैं। नारद जी ब्रह्मा के पुत्र नहीं हैं। नारद और ब्रह्मा जी में यदि तारतम्य देखा जाए विचार करके तो नारद जी बहुत ऊपर उठते हैं, नारद जी से वो प्रकट हुए हैं। प्रकट होना माने क्या, जैसे खंभे में से नृसिंह भगवान है तो खंभा श्रेष्ठ नहीं है, नृसिंह जी किसी भी पांचों में से किसी जगह से वो निकल सकते हैं क्योंकि पांच ही तत्व हैं, तो ऐसे ही उनको समझो, नारद जी का भी वैसा ही स्वरूप है। नहीं तो परंपरा में नहीं आते, ध्रुव लोक जो अभी कहते हैं ये ब्रह्मांड के अंतर्गत है, एक धाम है, किंतु फिर भी सच्चिदानंद स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, कोई नश्वर नहीं है ब्रह्मा का लोक, ध्रुव लोक।
वैकुंठ नहीं कहलाएगा,
वैकुंठ कहा जाएगा क्यों, जैसे वृंदावन है ना, ये वैकुंठ से ऊपर कहा जाएगा ना स्वयं वृंदावन, ऐसे ही वहां पर काल का कोई विक्रम नहीं है। अच्छा, ये जो ब्रह्मलोक बतलाया गया ये वैकुंठ के लिए, यहाँ का साधन भजन भी वैसा ही है। अब इसके ऊपरी तस्य ऊपरी गवांग लोक साध्यस्तं पालयन्ते ही स ही सर्वगतः कृष्ण महाकाशगतो महान तस्य ऊपरी, उसके ऊपर में ब्रह्मलोक जो भी बतलाया गया वैकुंठ, वैकुंठ के भी ऊपर में ये गोलोक वर्तमान है। साध्यगण, साध्यगण माने जिनकी हम साधना करते हैं ऐसे कृष्ण इत्यादि, उन लोगों वे लोग इसका पालन करते हैं। हे कृष्ण, वे लोग महाकाश का, महाकाश माने वैकुंठ, वैकुंठ में भी सबसे महान है। वैकुंठ का ही एक भाग है वृंदावन गोलोक, उसका ऊपरी भाग है, महान है सर्वोपरि। वर्तमान जो वैकुंठ लोक, उसके ऊपर वर्तमान जो गोलोक, या गोलोक ही आपका धाम है गोलोक, और आप ही उसके पालन करने वाले हैं। पितामह ब्रह्मा के निकट जिज्ञासा करके भी हम लोग इस विषय में कुछ अवगत नहीं हो सके, ये लोग देवता लोग कर रहे हैं, इंद्र इत्यादि कर रहे हैं, उस लोग को सब लोगों के लिए जानना बड़ा भारी असंभव है। सम दम, सम माने अंतर इंद्रियों को दमन करना। अंतर इंद्रिय क्या? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त। मन की वृत्तियां हैं क्रोध इत्यादि, क्रोध का वेग इत्यादि, इनको दमन करना सम। और दम माने बाहर इंद्रियों का दमन करना, यह है दम। इस संपत्ति से युक्त सुकृतिशाली व्यक्ति कर्मी लोग स्वर्ग में गमन करते हैं। जैसे महाराज हरिश्चंद्र कैसे थे, अंतर इंद्रियों बाहर इंद्रियों को दमन करने वाले थे। उनका बेटा मर गया तो भी क्या किया उन्होंने, बेटा मर गया किंतु अपनी पत्नी को कह रहे हैं, पहचान लिया, रात में सांप काटा उनके लड़के रोहिताश्व को, और उनकी स्त्री बिलबिलाती रोती हुई, वर्षा हो रही थी, घर में कुछ नहीं था, और उसको लेकर के श्मशान घाट में गई, रो रही है। महाराज हरिश्चंद्र ने देखा लठिया लेकर के डोम बने हुए हैं श्मशान की रक्षा करने वाले, वहाँ पर पहुँच करके बोले, कौन है, क्यों रो रही है? इतने में बिजली कड़की और उन्होंने देखा ये रोहिताश्व मारा पड़ा है और उनकी स्त्री उसको हाथों में लिए हुए रो रही है श्मशान घाट में, वर्षा हो रही है, असहाय की भांति विलाप कर रही है। उनका देख करके द्रवित हुए, लेकिन अपने इंद्रियों का संयम किया, कहा जे अब मेरी स्त्री नहीं है, बेटा भी हमारा बेटा नहीं है, मैं उसका नौकर हूँ टोम का, इस समय मुझे कर लेना है, इस कर्तव्य से हमको डिगना नहीं है, इसलिए मन को, इंद्रियों को, सबको एकदम ठीक करके, साहस बांध करके उसे कहा जे कफन दो, कफन का जलाने, यहाँ पर जलाने के लिए घाट का कर दो। वो तो बिलक बिलक करके रोने लग गई, कहा जे रोने से काम नहीं चलेगा, ये साधारण आदमी का काम है, कोई कर सकता है ऐसा? अरे हम लोग साधु संन्यासी बने हुए यदि स्त्री आ जाती है तो लोगों से छिपा करके उसको पैसे रुपये हम दे देते हैं। जैव धर्म में पढ़ो, देखो उसमें क्या लिखा, एक महात्मा थे और रात में उनकी स्त्री वहाँ पर पहुँच जाती है, और वैष्णव दास या किसने देखा, बाबा जी ने, एक परछाई जैसी दिख रही है, क्या है, इतने में देखा जो परछाई भाग गई और ये अपने को धिक्कार दे रहे हैं, ये क्या हुआ, मामला क्या है, अपने को दिख क्या है, मैंने अपना मुख काला किया, मैंने उसे आदान प्रदान कुछ कर। जब सन्यासियों की ऐसी गति है, बाबा जी लोगों की ऐसी गति है, संतों की ऐसी गति है, भूल जाते हैं, उनके प्रति मोह आ जाता है, और हरिश्चंद्र जी ने कहा आया भाव किंतु छोड़ दिया। दधीचि ऋषि अपने शरीर का मोह छोड़ करके और जीवित रहते हुए भी दही और चीनी लगाकर, बुरा शरीर में लगा करके गाय से चटवाते 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 प्राणों को छोड़ा, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, देवताओं के लिए भी संभव नहीं, ऐसा यदि कोई व्यक्ति है तो वो स्वर्ग में जाएगा, बस उन्होंने भक्ति नहीं की, इंद्रियों का दमन तो कुछ किया किंतु भक्ति कुछ नहीं की, इसलिए उस लोक में नहीं जाएंगे। इसलिए ये समझो, इन इंद्रियों से किया हुआ या उपार्जित जो कोई धन ज्ञान विद्या बुद्धि है वहाँ नहीं जा सकती। जितना भी हम व्याकरण पढ़ेंगे, जितना भी हम सब कुछ करेंगे इस जगत में काम, जिसको हम अपने इंद्रियों से साधना करेंगे, इन इंद्रियों से, वो कोई भी चीज़ नहीं जाएगी, वो नहीं ले जाएगी वहाँ। इस चीज़ को समझो, कौन सी वृत्ति ले जाएगी? कृष्ण की सेवा करने की जो वासना है ये ले जा सकती है शुद्ध होने पर, कुछ नहीं जानती है, कुछ नहीं। कोई एक गाय है, वो कृष्ण प्रश्न कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती ना, कुछ बोध नहीं। उसका दूध दूह करके कृष्ण को अर्पित कर दो, देखो जो क्या हो जाएगा। जो विद्या पढ़ने से, लाख चेष्टा करने से जो चीज़ नहीं होगी वो उस गाय को मिल जाता है। एक पेड़ है, एक बड़े भारी महात्मा हैं, रसिक तत्वज्ञ, भगवान की सब समय चिंता करने वाले हैं। उस पेड़ के नीचे बैठ करके वो भजन करते करते नाम हरे कृष्ण करते हुए और समाधिस्थ हो गए। पेड़ कोई चीज़ किया, पेड़ ने सेवा, किंतु उसके नीचे जो बैठ करके गए ये कृष्ण सेवा की वासना उनमें संक्रमित हो गई और देखो उसे चला गया। हम लोगों ने भी कुछ किया है कभी, वही संक्रमित होती है। तो ये जो वासना है कैसे संक्रमित होती है और ये वासना भी भक्ति होती है, इसको जो नहीं समझते वो चाहते हैं कि हम जागतिक चेष्टा के द्वारा भक्ति हम लाएं। इसलिए हम लोग विद्या पढ़ते हैं, कर्म कुशलता लाभ करते हैं, बुद्धिमान बनते हैं, किंतु इससे भक्ति नहीं होगी। विद्या का फल यही है, विद्या पढ़ करके हम समझें इस विद्या के द्वारा केवल अभिमान तर्क वितर्क ये सब आया। कृष्ण सेवा की वासना वो तो ऐसे ही आएगी, वैष्णव की सेवा से, हरि कथा के श्रवण से वो आएगी। तो इसलिए अब ये जो देवताओं की बात कहा, स्वर्ग लोक में जाने, इंद्रियों का संयम किया, एक थे क्या उनका नाम था, दधीची, और एक जो कबूतर वाले शिवी महाराज, देखो कैसन संयमी, बाज कोई खदेड़ता हुआ एक कबूतर को आया, कबूतर हाँपता हुआ शिवी के गोदी में गिर गया। इतने में बाज आया, महाराज आप क्या कर रहे हैं, इसे छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दूं, ये मेरा आहार है, प्रकृति का छोटा बड़ा का, उसे भी बड़ा वाला बड़ा का, और उसे छोटा वाले का बड़ा वाला, इसी तरह से ये सब के आहार हैं, आप इसमें बाधा न दीजिए नहीं तो आपको पाप लगेगा, ये मेरा आहार है। छोटी छोटी मछलियाँ बड़ी बड़ी मछलियों के खाद्य हैं, वहाँ पर ये जो क्रोकोडाइल होते हैं, मगर वो कैसे जीवित होते हैं, क्या खाते हैं, फल खाते हैं, छोटे छोटे प्राणियों को खा रहे हैं, और उनको भी खाने वाले बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, उनको भी खाने वाली व्हेल इत्यादि मछलियाँ हैं, ऐसे ऐसे सब हैं। तो एक जीव दूसरे को खा करके चलता है, ऐसे ये शिव जी के जबकि गोद में गिर पड़ा था। इस प्रकार से संवाद होने पर उन्होंने कहा नहीं, इसके बदले में तुम कुछ और ले लो खाने के लिए, इसको मैं नहीं दूंगा, तुम्हारा आहार है, ठीक है। उसने कहा जैसे तो मैं और कुछ नहीं खाता, मैं तो मांस खाता हूँ, अपना ही अपना मांस दीजिए। तो अपना मांस काट करके तौल करके देने लगे तो वजन ही नहीं पूरा हुआ, जांग काटा, पूरा पैर काट दिया, फिर यहाँ तक दिया, नहीं हुआ तो अपने आप बैठ गए तराजू में। इतने में धर्म वहाँ पर उपस्थित हो गए, धर्मराज इत्यादि, और उनको स्वर्ग लोक ले गए। बस यही ये संयम है। हम लोग थोड़ा सा एक अंगुली काट करके देने में क्या होता है बतलाओ, और उन्होंने अपने शरीर को काटते काटते एक बार ही दे देते तो हो जाता, किंतु एक बार नहीं उसने लिया, अंग को कटवाया बार बार, ये संयम है। ऐसे संयमी लोग स्वर्ग में जाएंगे, ये बहुत ही कष्टकर है, किंतु भगवान के लोक में, वैकुंठ लोक में जाने के लिए कैसा चाहिए, इस सब की कोई भी जरूरत नहीं। हरे नाम हरे नाम हरे नाम अव केवलम नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति। एक आदमी समस्त विद्या से हीन है, बुद्धि भी नहीं है, और वो हरि नाम करता है, उसको वैकुंठ की गति मिलेगी कि नहीं। क्यों? इस जन्म में तो दिखता है वैसा, फिर दूसरा जन्म करें उसमें शुद्ध नाम करेगा, इसके बाद में साधुओं का संग मिल जाएगा, कृष्ण की सेवा की वृत्ति मिलेगी, धीरे 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 धाम में रह करके वैष्णव के निकट रह करके भजन करेगा और अंत में उस चीज को पा जाएगा। कौन से संचित करने वाले?
अच्छा,
और ब्राह्मण ब्रह्म तपो युक्त करने ब्रह्म लोग उत्तमागति लोग, इसे ऊपर में ये संसार मैं नहीं हूं, मैं ब्रह्म वस्तु हूं, ऐसे जो तपस्वी लोग हैं ये ब्रह्म लोक में जाते हैं। ब्रह्म लोक माने शिवलोक के नीचे। किंतु गोपाल का जो लोक है गोलोक है, सब उचाए हुए गले में पीताम्बर को बांधे हुए, मानो हाथ से जोड़ करके मुस्कुराते हुए अपनी गलती क्षमा करते हुए मांगते हुए और उनके सामने में आकर के उपस्थित हुए। वही गले में वैजयंती माला और वही सब चीजें उपस्थित हो। कैसा रूप धारण किया? मनमत मनमत, ये स्वयं रूप है, द्वारकाधीश स्वयं रूप नहीं है, ये प्रकाश है, बल्कि ये काय व्यूह है, वो भी द्वितीय काय।